संस्था के उद्विकास को हम तालिका के रूप में इस प्रकार समझा सकते हैं। पहला विचार यानी व्यक्तिगत, दूसरा विचार प्लस विचार के अनुसार आचरण एवं पुनरावृत्ति ये आदत, तीसरा आदत प्लस समूह की स्वीकृति प्लस सामूहिक जनरीति, चौथा जनरीति प्लस भूतकालीन अनुभव ये हुआ प्रथा, पांचवा प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति प्लस सामूहिक कल्याण प्लस उपयोगिता ये हुआ रूढ़ी, छठा रूढ़ी प्लस एक निश्चित संरचना यानी ढांचा ये हुआ संस्था, संस्था के उद्गम उद्विकास का क्रम, संस्था की विशेषताएं गिलिन एवं गिलिन नामक विद्वानों ने संस्था के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर वन, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जन रीतियां प्रथाएं और रूढ़ियां अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृत प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं तो ये ही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। नंबर दो, अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफी लंबे समय तक चलती हैं, इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। नंबर तीन, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। नंबर फोर, सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक या अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक और विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व है। पांचवा, प्रतीक, सिंबल्स। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रॉस चर्च का और ओम आर्य समाज का प्रतीक है। हिंदुओं में मंगल कलश विवाह संस्था का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से संस्थाएं पहचानी जाती हैं। नंबर छह, परंपरा, ट्रेडिशन। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। यह परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती हैं। परंपराओं के अंतर्गत प्रथाएं, जनरीतियां, नियम तथा धार्मिक संस्कार आदि आते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त संस्था की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला विचार, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा संरचना, चौथा अभिमत एवं अधिकार, पांचवा विरासत, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतर। संस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। जहाँ कुछ विशिष्ट हितों को लेकर समितियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ उनके कार्य संचालन की दृष्टि से कुछ संस्थाएं भी विकसित हो जाती हैं। मैकाइवर व पेज के अनुसार प्रत्येक समिति का एक संस्थात्मक पक्ष होता है जिसके अभाव में कोई भी समिति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। इन विद्वानों ने नीचे दी गई तालिका के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि विभिन्न प्रकार की समितियों के साथ साथ उनसे संबंधित संस्थाएं भी होती हैं। यह तालिका तीन कालम बने, समिति, विशिष्ट संस्थाएं और विशेष हित। समिति में परिवार, विशिष्ट संस्थाएं, विवाह, घर, उत्तराधिकार और विशेष हित में यौन संबंध, घर, वंशावली। नंबर दो, समिति में महाविद्यालय, विशिष्ट संस्थाएं में व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व और विशेष हित में शिक्षण व्यावसायिक तैयारी। नंबर 3 समिति में व्यापार, इधर विशिष्ट संस्थाएं में हिसाब किताब की प्रणाली, संस्थापन, अंश, पूंजी, विशेष हित में लाभ। नंबर 4 समिति में व्यापारिक संघ, मजदूर संघ, चर्च, गिरजाघर, धार्मिक समिति, राजनीतिक दल। विशिष्ट संस्थाएं, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना, संप्रदाय, धर्म, भातृत्व, उपासना के तरीके। विशेष हित, नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी दरें, कार्य की दशाएं, धार्मिक विकास। समिति में नंबर 4, 5 राजनीतिक दल। विशिष्ट संस्थाएं में प्राथमिक इकाइयां, दल यंत्र, राजनीतिक मंच। विशेष हित में कार्यालय, शक्ति, सरकारी नीति। समिति में राज्य, विशिष्ट संस्थाएं में विधान, वैधानिक संहिता, सरकार के स्वरूप। विशेष हित में सामाजिक व्यवस्था का सामान्य नियमन। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां विभिन्न प्रकार की समितियां पाई जाती हैं, वहां साथ ही विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी। विभिन्न संस्थाओं को प्रमुखता निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2 आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 4 धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। नंबर 5 शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड नंबर 6 मनोरंजनात्मक संस्थाएं, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस। ये संस्थाएं मनुष्यों के विभिन्न हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। इनमें से प्रत्येक प्रकार की संस्था के अंतर्गत नियम, विधि विधान और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था आती है। संस्थाओं के कार्य एवं महत्व। संस्थाएं निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। नंबर 1 मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। जब संस्थाएं आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य बंद कर देती हैं, तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। शिक्षण संस्था, विवाह संस्था एवं परिवार नामक संस्था मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। नंबर 2 व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। व्यक्ति साधारणतः इसी प्रणाली के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में संस्थाएं व्यक्तियों का मार्गदर्शन करती हैं, उनके कार्य को सफल बनाती हैं और उन्हें हर समय यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। नंबर 3 व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्यप्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं, तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक है। अन्य शब्दों में संस्थाएँ व्यक्तियों के व्यवहारों में अनुरूपता उत्पन्न करने में योग देती हैं। नंबर 4 व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार प्रतिमानों के विरुद्ध आचरण करता है, उसे दंडित भी किया जा सकता है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर रही हैं। नंबर 5, संस्कृति की वाहक संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे अस्थायित्व तो प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। परिवार ही बच्चों को समाज की परंपराओं, प्रथाओं, आचार व्यवहार, खान पान, धर्म आदि से परिचित कराता है और संस्कृति को अस्थायित्व प्रदान करता है। समाज को धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं भी संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य करती हैं। नंबर 6, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति की स्थिति पद प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की प्रस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। एक महाविद्यालय में किसी को आचार्य की, किसी को व्यवस्थापक की तो किसी को पुस्तकालाध्यक्ष की स्थिति प्राप्त होती है और साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी। नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन में सहायक संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, लेकिन जब परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल जाती हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं, साथ ही समय के अनुसार संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो जाता है। उपयुक्त विवरण से इतना स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाएं अनेक उपयोगी कार्य करती हैं। ये कार्य व्यक्ति, समाज और संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।